శుద్ధాత్మని వందో జ్ఞానానందకర నేమి చంద్ర గుణకం మాధవ వంద కల్మల పద పుణ్యపయోనిదినం దోష దహన గుణ గహన గణ హరి కరి హరి అయహం స్వానుభూతి రమణి రమణ జగనాయక జయవన్ సిద్ధ శుద్ధ సాధు సహజ స్వరస సుధార సధార సమయ సార శివ సర్వగత నమత సుఖసార జయని వాణి వర్ణత విశ్వ ప్రమా సాపదముద్రితాహితర కరం సకల కళ్యాణ మై నమో నగన జైన జన జ్ఞాన జ్ఞాన జనని మై నమాన వినదాన జన హీన తనసి గృహ విధి మంగళ కరణత శబ విధి మంగళ హో కోట ఉదంగళ దూరి శబ कर्णानी परिचय पुस्तक के आधार से अभी हमारा गुणस्थान का प्रकरण चल रहा है। बारहवां प्रकरण हमारे चल रहा था, उसमें मुनि के जो गुणस्थान है उसमें हमने 100 पेज हिंदी में वहां तक आए थे। गुणस्थान के नाम अभी तक हम जो पढ़े हैं उसके हम याद करेंगे ना, तो पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा देशवीर, छठा और सातवा और प्रमोतवीर, यहाँ तक। और केवली के कितने गुणस्थान है, सहयोग केवली और अयोग केवली, यहाँ तक तो मालूम है। अभी 8, 9, 10, 11, 12 ये पांच के नाम अभी हमने यहाँ से देखे नहीं, वो भी देखे नहीं। उसमें से ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां इसको क्या कहते हैं, उपसंशय, और 8, 9, 10 और 12 इसको क्या कहते हैं, सपक्ष। 11वें, 12वें का भी नाम हमने देखा था, 11वें का नाम उपशांत मोह, मोहनीय जो है वो पूरा उपशमित हो गया है इसलिए उपशांत मोह, और 12वां है क्षीण, क्षीण यानी क्षय हो गया, क्षीण यानी दुबला हुआ ऐसा नहीं, क्षीण मोह। 11वें, 12वें गुणस्थान में जीव पूर्ण वितरागी है, 12वें में भी वो तो कायम के लिए वितरागी हुआ और 11वें वाला वो एक अंतर्मूर्त के लिए वितरागी हुआ, अंतर्मूर्त तक वो वितरागता के साथ वहाँ है और फिर 13वें में उसको केवल ज्ञान हो जाता है 13वें के पहले समय से। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। अब नाम हमको मालूम नहीं किस किस से, 8, 9, 10 ये तीन के नहीं मालूम, तो 8वें का नाम मालूम है किसी को, अपूर्वकरण क्या है, अपूर्व, पहले कभी ऐसे परिणाम नहीं हुए इसलिए उसको अपूर्व कहते हैं, अपूर्वकरण। और दूसरा क्या है, 9वां अनिवृत्तिकरण, और 10वें का सूक्ष्म सांप्राय, ये आगे आने वाले हैं सारे नाम लिखे अगले प्रकरण में, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय। अभी इन्हें पहले से 14वें तक के नाम सारे याद हो गए, जिन्हों सारे सब एक साथ, मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली। आसान है, ये 3-3 साल के बच्चे भी, वो तेजोभाई याद थी ना, उनकी लड़की संगीता, उनकी लड़कियों ने भी ये सारा याद किया था, और एक दो ही नहीं बहुत सारे बच्चों ने याद किया था, और अभी 5-6 साल हुए फिर भी अभी जट से बोल देते। आसान है, अभी तो हमने स्वरूप भी समझा है इसका, देखो ये 100 पेज पर हम आते हैं। हाँ, हाँ
अभाव होता है।
क्या प्रश्न है?
गुणियों के बीच
हाँ, हाँ,
टुकड़ी के अभाव होता है।
हाँ
अभाव होता है तो उपशम नहीं
कहते, उपशम नहीं कहते उसको। जैसे अभी अनंता पहले जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, जो जीव मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में आता है वो औपशमिक सम्यक्त्व होता है। सबसे पहले उसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अब औपशमिक अवस्था में उसके दर्शन मोहनी का तो उपशम हुआ ही है, यानी मिथ्यात्व का भी उपशम हुआ है, और ये जो तीन कषाय है वो भी उतने समय के लिए उपशमित हो गए, तो वो संज्वलन रूप से उदय में आ जाए। वो तो सत्ता में है अभी, औपशमिक समय से वाले का उपशम हो चुका है। सूक्ष्म समय दृष्टि जीव के वो अंदर है, भविष्य में पड़ा है, परंतु वो उदय में आते समय संज्वलन रूप से उदय में आता है। यदि पूरा अभाव हो जाता तो फिर छठे सातवें गुण स्थान से कोई नीचे गिरता ही नहीं, क्योंकि पहले में आता है, यानी मिथ्या तो अंदर पड़ा है तभी तो उदय में आ सकता है। और फिर मिथ्या तो के साथ अनंतानुबंधी भी उदय में आएगा, यानी अनंतानुबंधी और प्रत्यागम प्रत्याख्यान सारे का उदय फिर शुरू हो जाएगा, यानी अंदर कहीं है ना छिपे हुए। यदि पूरा ही जो क्षायिक समय दृष्टि है उसको तो कभी नहीं उसका उदय हो, क्योंकि अंदर है ही नहीं, उसकी सत्ता में ही नहीं है, सत्ता में से समूल नाश हो गया क्षायिक समय दृष्टि। तो जैसा सम्यक्त होगा औपशमिक सौक्षमिक या क्षायिक, वैसे उन कर्मों की भी अवस्था अंदर होगी, क्योंकि कर्णानुयोग में तो ये अंदर सत्ता वाले कर्म भी गिनाएंगे, वहाँ उदय का अभाव है इतना कहेंगे, और द्रव्यानुयोग वाला कहेगा वहाँ है ही नहीं अभाव है, क्योंकि द्रव्यानुयोग में स्थूल कथन होता है, और प्राइमरी जो प्राथमिक जीवों को तो आगे वाली बड़ी सूक्ष्मता की वाली बातें कहेंगे तो दमलिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा उस पर बात नहीं करते, परंतु अभी हम कर्णानुयोग के आधार से पढ़ रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सूक्ष्मता तो होगी। और इस पुस्तक में तो बिल्कुल सूक्ष्म एकदम बहुत ही सूक्ष्मता नहीं ली है, क्योंकि गुणस्थान यदि पूरा पढ़ना चाहते हो तो गुणस्थान विवेचन नाम का जो पुस्तक है ना उसमें तो प्रत्येक गुणस्थान की बहुत सूक्ष्मता से चर्चा है, और ज्यादा चर्चा सीखनी है तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तो और बहुत है, कौन से गुणस्थान में क्या क्या होते हैं वहाँ से सारे गणित परिणामों की नाप वगैरह सारे उसमें है, तो हम तो अभी यहाँ फूल चर्चा करें। तब ये 100 पेज तक हम कल आए थे, उसमें हमने देखा था कि 13वें गुणस्थान जो अरियंत का है वहाँ हमने देखा था कैसे कैसे उनके मुनि के साथ भी हमने चर्चा की थी कि जो आहार संज्ञा मुनि को नहीं होती है तो सातवें वाले को तो केवली को कैसे होगी, स्त्री पर्याय वाला जीव 5वें गुणस्थान तक ही जाता है इसलिए स्त्री को 13वें-14वें गुणस्थान नहीं होगा, या ऊपर का कोई भी गुणस्थान है मुनि का भी नहीं होगा, छठा सातवां गुणस्थान भी स्त्री को नहीं आ सकता, तो ऊपर की तो बात ही नहीं। ऐसे सारे हमने अरियंतों का स्वरूप निश्चित किया था। 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो जाता है। बांधने की बात तो हमने कहाँ से देखी थी, 4वें-5वें-6वें-7वें को बंध शुरू हो जाता है और 8वें तक वो बंध चालू रहता है, फिर बंधना रुक गया और उसका उदय कब होगा, 13वें गुणस्थान, यानी किसी को 2 भाव किसी को 3 भाव तक तो वो बांधता रहा, 2 भाव तक, यानी एक वर्तमान में किसी ने भाव में बांधना शुरू किया, हो सकता है उसी भाव में वो तीर्थंकर होगा, ऐसा होता है ना, या कोई जीव फिर वहाँ से देव में जाएगा या नरक में जाएगा, वहाँ भी तीर्थंकर प्रकृति बांधता रहेगा, और फिर मनुष्य होकर जन्मेगा वहाँ भी तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यूस बांधना चालू है, परंतु वो उदय कब उसका फल कब आएगा, 13वें गुणस्थान में आएगा। वो तीर्थंकर प्रकृति के साथ और भी पुण्य प्रकृतियाँ बनती है ना सारी, तो जिसके तीर्थंकर प्रकृति है उसके ऐसे जन्म के अतिशय होते हैं, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है ऐसा कहेंगे तो 13वें। वो तीर्थंकर जीव को जन्म के
बाहर की बात नहीं है, वो भी तो बाहर की बात है, तीर्थंकर आत्मा शुद्ध नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का एक भेद है,
वो नाम कर्म का है, वो उद्गल है ना, वाणी में उसका है, समोचरण की रचना, दिव्य ध्वनि खेलना, ये वाणी है, उद्गल है, भाषा वगैरह है ना, उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके साथ बनता हाँ, क्योंकि कीर्तन का प्रकृति बनती है तो वो तो महापुण्य प्रकृति है, उनके साथ अन्य भी पुण्य प्रकृति बनेगी कि नहीं बनेगी, तो जिसके पुण्य कीर्तन का प्रकृति है उसके ऐसे यानी जिसमें बांधी हुई है उसको जन्म के भी अतिशय होते हैं, चौथे पांचवे छठे सातवें बनती है, हाँ तो ही उनको जन्म के अतिशय होंगे। यदि कोई यहाँ आकर अभी बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधता है जिसके गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं होते तो उनके वो अतिशय भी नहीं होंगे। उदय वहाँ नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है उनको, सत्ता में है, परंतु वो जीव इतना पुण्यशाली पुण्यशाली नहीं, उनके अन्य भी पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा है। जिसको तीर्थंकर प्रकृति अकेले एक तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा क्या, अन्य भी पुण्य प्रकृति बांधेगा सारी, तो उसके साथ वाली जो कुछ है उसके प्रभाव से उनके जन्म के अतिशय भी होते हैं, छह महीने पूर्व ही आकर वो इंद्रिय सारे रत्न बरसाते हैं, वो कुछ तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं कहेंगे क्योंकि तब तो वो सर्वात सिद्धि में है, अन्य कहीं है ऊपर, अभी श्रेणी का राजा नरक में पड़ा है बराबर, पहले नरक में वो गर्भ में आने से पहले छह महीने वहाँ रत्न बरसेंगे, तो वो उसको तीर्थंग प्रकृति का उदय कहेंगे हम, क्यों नहीं ना, क्योंकि तीर्थंग प्रकृति का उदय तो तेरहवें में ही आता है। देख अपना विषय चालू रखेंगे अभी, चलो देखो, केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मिला सबको तेरहवा गुणस्थान प्रारंभ होता है, उनके आयु का अंतिम एक अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने तक तेरहवा गुणस्थान रहता है, यानी अभी तेरहवा गुणस्थान किसी ने प्राप्त किया समझो 100 साल की आयु है और 80वें साल में उनको केवल ज्ञान हुआ तो अभी कितनी आयु बची है उनकी 20 साल, तो तेरहवें गुणस्थान कितना बड़ा होगा तो 20 साल में वो छोटा एक अंतर्मुहूर्त कम, क्योंकि 14वें का काल है अयुरुलु, ये जो लघु ह्रस्व स्वर है अ ई उ रु लु, इतना बोलने को जितना टाइम लगता है उतना काल है 14वें मिनट का, तो 20 यानी 80वें साल में उनको केवल ज्ञान हुआ और 100 साल की आयु तो पूरी भोगेंगे, उसके पहले तो निर्वाण होगा नहीं, आयु कर्म है ना उसका, तो निषेक एक एक समय में एक एक निषेक करके खिल जाएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि घट जाएगी और जल्दी उदीर्ण होकर निकल जाएगी, ऐसा कुछ उसमें नहीं है, तो उनकी जितनी आयु बची है उसमें से वो 14वें का काल निकाल लो, इतना 13वें गुणस्थान का काल होगा, तो 13वें गुणस्थान का काल हर एक जीव का अपना अपना अलग अलग होगा, हो सकता है कोई जीव अंतर्मुहूर्त में 13वां 14वां करके मोक्ष चला जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती इतना चक्रवर्ती पद किया, यहाँ समोचरण लगा 7000 वर्ष तक तो युद्ध करने के निकल गया, हमें लगता है कैसे ये क्षायिक समय दृष्टि जीव है, दिव्य ध्वनि छोड़कर कहाँ चला गया, हम कहते ना वो व्यापार धंधे में लग गया शास्त्र सुनना छोड़कर, ऐसे कोई जीव होते हैं कि उनका पुरुषार्थ जब लगा मुनि दीक्षा जब अंगीकार की तो कुछ अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया, पहले अंतर्मुहूर्त में मुनिपद डायरेक्ट मुनिपद लिया यानी छठे सातवें प्राप्त कर लिया और फिर एक अंतर्मुहूर्त में हजारों बार छठा सातवां होते होते शपथ श्रेणी चढ़ ली बस केवल ज्ञान प्राप्त, तो अलग अलग जीवों का अलग अलग क्रम हो सकता है, तो क्या कहते हैं कि उनके आयु का यानी जो केवल ज्ञानी है उनके आयु का अंतिम एक अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने तक 13वां गुणस्थान रहता है, 5 लघु स्वर यानी अ ई उ रु लु, ये रु और लु आपको पता ही नहीं है, है ना दीपाली कभी तो सुना है ये भी, हाँ पहले में अ आ ई उ ये सारे स्वर कहते हैं तो ये भी एक स्वर है रु और लु। उच्चारण में जितना काल लगता है उतना लघु अंतर्मुहूर्त काल 14वें गुणस्थान है, यानी एक छोटा अंतर्मुहूर्त है। इस गुणस्थान में अघाती कर्मों में से 85 प्रकृति की सत्ता रहती है, उनका नाश करके जीव पूर्ण रूप से कर्म विरहित सिद्ध परमेश्वरी हो जाता है। घाती कर्म तो पहले ही नष्ट हो चुके थे और अघाती बचे थे। अघाती में क्या है, साता असाता है, आयु कितने प्रकार की आयु है अभी वहाँ, एक मनुष्य आयु जो चल रही है ना उनकी, गुज्जमान जिसको कहते हैं वो आयु है, मनुष्य आयु। और फिर नाम कर्म की कुछ प्रकृतियाँ हैं और बाकी उच्च गोत्र है, इतना ही अभी उनमें। तो हाँ हाँ, और जो है ना वो नाम कर्म की भी जो है, नाम कर्म की 93 है, उसमें से 13 पहले ही क्षय करता है शपक श्रेणी, इसलिए 85 हो गए।
ये चार जाएंगे,
कौन से चार,
पुत्र आयु और वेदनीय दोनों 85 में से।
हाँ आयु कौन सी, आयु उन्होंने बांधी नहीं ना वहाँ, कौन सी मनुष्य आयु।
हाँ
वो 85 में है ना,
वही तो मैं कह रहा हूँ वो चार निकलते थे 81 नाम के मुझे
तिरानवे से 13 ही जाती है, 80 रह जाती, 80 रह जाती, साता और असाता दोनों होती है उनको,
साता असाता उससे गोत्र और मनुष्य आयु।
हाँ
ये आपने क्या लिखा है, इसमें गुणस्था में अगर जन्मों में से 85 प्रकृति से ये जानने के लिए तो रही,
तो नीच गोत्र वो सत्ता में पड़ा होगा, वो उसका क्षय नहीं होता है पहले, दोनों गोत्र है, उच्च गोत्र तो उदय में है परंतु सत्ता में अंदर नीच गोत्र भी पड़ा है। हो गया ना वो 80 नाम कर्म की। हाँ हमने देखा था नाम कर्म का, कि जो तीर्थंकर और आहार जीव दोनों का सहित वाला जीव जिसको 93 सत्ता में थी प्रकृतियाँ, तो 13 जाती है 9वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में वो 13 का क्षय होता है। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको सभी के नाम मालूम नहीं, अभी उसका कंफ्यूजन होगा कौन सी जाति क्या जाति है, तो 13 वहाँ 9वें गुणस्थान में उसका क्षय हो जाता है और फिर रही 80। तो इतना ही जानना कि नाम कर्म की 80 प्रकृति, गोत्रे की 2, वेदनीय की 2 और 1 आयु, ऐसे 85 प्रकृतियों का नाश करके जीव सिद्ध भगवान हो जाता है। शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं, जीव उसी समय में ऊर्ध्वगमन करके, ऊर्ध्वगमन यानी सीधा वर्टिकली अपवर्ड सिद्धालय तक सीधा ही सीधा जाएगा पूरा, उसको कोई बाधा नहीं है, इतने सारे स्वर्गों के विमान है, सिद्ध शिला है, उसको भी पार करके ऊपर चला जाएगा। ऊर्ध्वगमन करके लोकाकाश के शिखर पर जाकर विराजमान होता है और अनंत काल तक वहीं पर रहता है, फिर वहाँ यहाँ वहाँ घूमना, इधर से उधर जाना, ऐसा कुछ नहीं, वही एक ही जगह में स्थित है। सभी गुणों की स्वभाव पर्याय होती रहती है, जीव अपनी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था में रहता है, इस तरह सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत होते हैं। बेटियों हमारा प्रत्येक का स्वभाव भी सिद्ध समान ही है। देखो ये बार बार सिद्ध समान सिद्ध से क्यों कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वो जो जीव द्रव्य है वो पूर्ण शुद्ध रूप में है, यानी जैसा स्वभाव है वैसा उन्होंने पर्याय में पूर्ण प्रकट कर दिया है। तो हमारा स्वभाव और सिद्ध का स्वभाव अलग होगा कि एक ही है, एक जैसा ही है ना, इसलिए उनकी स्वभाव की तरफ तो देख नहीं सकते, तो उनकी पर्याय की तरफ देखते हैं, क्या है केवल ज्ञान प्रकट किया है, पूर्ण वितराग है, ऐसे ऐसे ये सारे गुणों की अनंत शक्ति पूर्ण प्रकट है, तो वो स्वभाव को या उनके पर्याय को याद करके हमें अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। आईने में क्यों देखती है, प्रतिबिंब दिखता है, चेहरा दिखता है, तो चेहरा देखने के लिए चेहरा देखते हो, तो यहाँ का ज्ञान करने के लिए कि यहाँ सब ठीक ठाक है ना, ये देखने के लिए आईना देखते है ना, क्यों क्यों देखते है, वो प्रतिबिंब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना है ऐसा सोचकर और यहाँ का निर्णय करने के लिए हम वहाँ देखते हैं। तो सिद्धों को भी हम क्या कहते हैं, आदर्श, आदर्श यानी क्या, बोल आइडल आदर्श का और एक अर्थ क्या मालूम है? आईना, दर्पण। दर्पण को आदर्श कहते हैं। हाँ, यह आता है शास्त्र में। तो वो भी हमारा दर्पण है। कैसे दर्पण है? कि उसमें हमारे अपना स्वभाव दिखता है। तो सिद्ध भगवान के पास, अरिहंत भगवान के पास क्यों जाते? हमारा स्वभाव वहाँ दिखता है, वो देखने के लिए हम जाते। वो देखकर अपने स्वभाव का ज्ञान होता है। वैसे आईने में देखकर यहाँ का ज्ञान करते, वहाँ प्रतिबिंब को पाउडर नहीं लगाते या वहाँ कुछ दाग भी होगा तो वहाँ नहीं पहुँचते, कहाँ करते हैं? यहाँ। वैसे अपना स्वरूप हम वहाँ देखते हैं, परंतु लक्ष्य हमारा कहाँ है? निर्णय किसका करना है? अपना करना है। सिद्ध भगवान का निर्णय नहीं करना है। उनका स्वरूप ख्याल में आते ही अपने स्वभाव का निर्णय होता है। इसलिए हमको रोज जब हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, कि बार बार उनके गुणों का स्मरण करके हमें अपने स्वभाव का ध्यान हो जाए, क्योंकि स्वरूप ही भूल गया है जीवन आदि से, और पर्याय जितना ही अपने को मानता है। इसलिए अपना स्वरूप जानने के लिए हम सिद्धों की पूजा करते हैं, सिद्धों के गुणों का स्मरण करते हैं, सिद्धों का नाम लेते। अकेले खाली सिद्ध सिद्ध कहने से कुछ नहीं होगा। सिद्ध का कैसा स्वरूप है वो पूरा अपने ख्याल में आए, कैसी वितरकता, सर्वज्ञता, शरीर रहित पना, राग द्वेष रहित पना, यानी कोई भी कर्म नहीं ना, अभी ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नो कर्म है, इनसे विरहित है। तो ऐसा स्वरूप अपने ख्याल में आना चाहिए। यही जीव द्रव्य का स्वरूप है और हम भी जीव द्रव्य, तो हमारा भी यही स्वरूप है। इस तरह से सिद्धों के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हमें करना आवश्यक है। देखो कि हमारा प्रत्येक का स्वभाव ही सिद्ध समान ही है। यह स्वरूप यानी स्वभाव तो विद्यमान है, प्राप्त है। अभी हमारा जो स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, वो कहीं से लाना है कि अभी है, वर्तमान में है ना? हाँ। हमें प्राप्त की प्राप्ति पर्याय में करनी है, यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो पर्याय में प्रकट करना है, उसको कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति। सिद्ध भगवान का स्वरूप जानकर उनके जैसा और उनके जितना ही हमें अपना स्वभाव मानना चाहिए। कितना? जितना उनका है उतना ही मानना चाहिए। परंतु आज तक हम अपने आप को सिद्धों से अधिक मानते आ रहे थे। दीपाली, सिद्धों से अधिक माना है ना? नहीं माना? देखो अभी अभी पढ़ेंगे। क्यों? सच नहीं लगता ना? बहुत से लोग कहेंगे अरे हमने तो स्वयं को सिद्धों से ही माना है। दीपाली भी कहती ना, हमने सिद्धों से ही माना, और आप तो अधिक मानने की बात कर रही है, यह कैसे संभव है? सिद्ध भगवान और हमारा स्वभाव, इनमें समानता है। जब तक हमने अपने स्वभाव को नहीं जाना है, तब तक हमने क्या माना उसे देखते हैं। इसी कारण से क्या मिथ्यात्व अवस्था में हमने अपने को क्या माना? तो सिद्ध अकेले है, हमने स्वयं को बाल बच्चे परिवार आदि सहित माना। सिद्ध शरीर रहित है, हमने स्वयं को शरीर सहित या शरीर को ही स्व माना। सिद्ध राग रहित है, हमने स्वयं को राग वाला माना, कषाय सहित माना। तो सिद्धों से अधिक हुए ना? उनमें शरीर नहीं है, राग नहीं है, और हमारे पास है। सिद्ध कर्म रहित है, हमने स्वयं को कर्म और उसके उदय के साथ एक नहीं माना। सिद्ध परद्रव्य का अकर्ता है, हमने स्वयं को परद्रव्य का कर्ता माना। देखो मैं कुटुम्ब का करता हूँ, समाज का करता हूँ, ये सारा कर्ता बना, ये सारे मिथ्या कल्पनाएं हैं उसकी, परंतु मान्यता में माना ना उसने। मैं शरीर वाला हूँ, मैं राग वाला हूँ, मैं इतना पुण्यशाली जीव हूँ, मेरे पास ऐसे कर्म है पुण्यवान कि मैं भी उसका सुख भोग रहा हूँ, ये सारे उसकी मान्यता है। हमने परद्रव्यों को स्वयं को हमने परद्रव्य का कर्ता माना। सिद्ध परद्रव्य का अभोक्ता है, हमने स्वयं को परद्रव्य और इंद्रिय विषयों का भोक्ता माना। सिद्ध केवल ज्ञानी है, हमने स्वयं को प्रकट ज्ञान जितना माना। सिद्ध गुणस्थानातीत है, हमने स्वयं को गुणस्थान रूप माना। गुणस्थान तो है हमारे, परंतु उतना ही अपना स्वरूप माना, स्वयं को मिथ्या दृष्टि माना। पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता है। देखो मिथ्या दृष्टि माना तो आपको होगी, मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि माना, उसमें क्या भूल हो गई? हाँ, पर्याय जितना माना। मिथ्या दर्शन ये अनंत गुणों में से एक गुण की एक अभी एक समय वाली पर्याय, पर अपने को कितना माना उतना ही माना। पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, यानी जो मिथ्या दर्शन चल रहा है वो तो ज्ञान में आएगा, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसको सम्यक दर्शन ज्ञान में तो आएगा, उनकी विद्यमानता है। परंतु जब स्वभाव का ज्ञान करके त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए, ये सारे त्रिकाली एक रूप ध्रुव यानी वो सामान्य, जैसे ज्ञान के पर्याय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो ये पांच अलग अलग भिन्न भिन्न होती ना। अब अकेला ज्ञान कहो तो क्या स्वभाव है उसमें, उसको कहते सामान्य। वैसे अनंत गुण स्वरूप ऐसा जो द्रव्य है, अभी अनंत की दृष्टि छोड़ो तो उनका एक रूप अभेद ऐसा जो है उसको कहते सामान्य। तो उसकी दृष्टि करने से, वही मैं हूँ मानने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। पर पदार्थ, हाँ अभी शरीर है वो क्या है, पर है ना, यानी जो भी चीजें है उनकी उपस्थिति है, उनकी प्रेजेंस है वहाँ, वो जगत मिथ्या ऐसा नहीं है, पर भी है, पर्याय भी है, वो ज्ञान में भी आती है, ऐसा नहीं कि ज्ञान में से निकल जाती। तो पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता है। परंतु जब स्वभाव का ज्ञान करके त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, ये दृष्टि का कमाल है ना, अपने आप को कैसे देखना। जैसे आप सोने की बंगड़ी है तो उसको बंगड़ी के डिजाइन के रूप में देखना, ये अपनी एक नजर है। और किसी ने पूछा है कि ये कितना सोना है आपके पास, तो उसकी तरफ हम सोने की दृष्टि से देखते हैं। तो वस्तु तो वही है, वस्तु में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे देखने की दृष्टि में हुआ। वैसे अपने आप की तरफ ये सामान्य जो त्रिकाली है उस दृष्टि से अपनी ओर देखना है। तो विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता है यानी अनुभव में आता है। अन्य सभी बातें उस दृष्टि में उसके विषय में नहीं आती, यानी अन्य बातें होती नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप दर्पण में देखती हो अपना चेहरा, तो सारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, वो चेहरे पर, प्रतिबिंब पर। उसी दर्पण में वो बाहर कुछ कपड़े पीछे टंगे हुए उनका भी प्रतिबिंब दिख रहा है, बाजू में और कोई है, वो सारे का प्रतिबिंब उसमें। दर्पण की एक भी जगह ऐसी नहीं कि जिसमें प्रतिबिंब नहीं है। हमें क्या दिखा उसमें अकेला, अपना चेहरा ही दिखा। ये प्रैक्टिकल बात करके देखो कि उसमें कितने सारे प्रतिबिंब आजू बाजू के सारे झलक रहे, परंतु वो कहीं है कि नहीं वो पता नहीं चलता। वैसे जब स्वभाव का ज्ञान करते उसी पर लक्ष्य केंद्रित करते, क्योंकि ये मुख्य गौण करने की कला है हमारे पास और हम लौकिक जीवन में रोज करते हैं उसको, यही यहाँ लागू करना कि स्वभाव के ऊपर नजर केंद्रित करते हैं और मैंपना स्थापित हो गया वहाँ, तो अन्य सारी चीजें हम वो है कि नहीं वो पता नहीं चलता, उसको गौण कर देते। उसके विषय में नहीं आता। तो पहले तो पर का भी ज्ञान हमने कराया 20 प्ररूप नाम के द्वारा, फिर जीव की भी पर्याय का ज्ञान करते हैं। जैसे अभी हम विषय चल रहा है ना पंचाध्याय में, 9 तत्व रूप जीव के पर्याय, इनका पहले ज्ञान कराएंगे। फिर सामान्य कहीं और अन्यत्र नहीं है, पर्याय किसकी है, विशेष कहाँ है, सामान्य जहाँ है वही पर उसकी विशेष है। अभी विशेष की दृष्टि करना गौर, वो विशेष को गौण करना और सामान्य को पकड़ना। जैसे हमने डिजाइन को गौण किया और सोने को पकड़ा, तो उसके लिए क्या किया, अपने नजर में खाली फर्क हुआ किस एंगल से हम देखते उसकी तरफ। ऐसे ही यहाँ विशेष को गौण करके सामान्य की दृष्टि करना, स्वरूप की दृष्टि करना, तो स्वरूप ख्याल में आता। हाँ वो अनादि से विशेष को ही देखते आ रहे हैं, और वो भी जीव के विशेष है क्या पुद्गल के, इसका भी पता नहीं है। पुद्गल के विशेषों में अपना विशेष मानकर, अपना स्वरूप मानकर हम जन्म से मरण तक चलता रहता है, सिखाना नहीं पड़ता यही मैं हूँ, यहाँ मनुष्य में जन्मा तो ये शरीर ही मैं हूँ। फिर उसको कैसा धोना, कैसा रखना, कैसा श्रृंगार करना, कैसे ये सारी बातें चलती है, दिन रात वही चलता है। इसीलिए इन सभी बातों का सर्वांगीण ज्ञान होने के पश्चात, देखो ये महत्व की बात है, सर्वांगीण ज्ञान होने के पश्चात इसका अर्थ होता है ये व्यवहार में के द्वारा ये सारा जानने के बाद, इसको कहते हैं ये सर्वांगीण ज्ञान। पश्चात निज ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए यानी पहले ये सारे बताएंगे, ये गुणस्थान है, ये मार्गणाएं है, ये ऐसा है, वैसा है, ये सारा, ये राग द्वेष ऐसे होते हैं, जीव के ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, आश्रय बंध समन्वय ऐसे उनके पर्याय होती है। ये सारा ज्ञान कराने के बाद अभी समझ में आया कि जीव ये ऐसा है, आत्मा इतना अनंत गुणों का है, उसके इतने असंख्यात प्रदेश है, ये सारा समझने के बाद कहते अभी इसको गौण कर दो, अभी उसका विचार मत करो। तो अभी क्या करना है कि निज ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए, यानी अभी निज ध्रुव शुद्धात्मा को यानी सामान्य को जानो, ये बड़ी बड़ी उन्हें शब्द भूल जाओ। अब तक तो विशेषों का ज्ञान किया, अब इसके पश्चात अब उसको भूल जाओ, उसको अलग रखो, अब सामान्य को जानो। तो समयसार ग्रंथ में 56वीं गाथा में कहा है कि ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत, वर्णादि यानी वर्ण रस गंध स्पर्श आदि सारे राग द्वेष वगैरह वगैरह सभी भाव व्यवहार नहीं से जीव के कहने पर भी वास्तव में अर्थात निश्चय नहीं से जैसी एक्चुअल वस्तु स्थिति है वैसा बताना, उसको कहते निश्चय नहीं। तो निश्चय नहीं से उसमें एक भी जीव का नहीं है, जैसे वर्ण जो है वो वर्ण किसका है, उद्गल का है, यानी शरीर में डालो वर्ण रस स्पर्श सारे, तो ऐसे अलग अलग सब गिनाइए। देखो ये वर्णादि 29 भाव कौन से है, इसका कथन समय सार गाथा 50 से 55 में किया हुआ है। मुझे लगता है कि तुम स्वयं इसे समय सार में इसे पढ़ो, फिर भी मैं मेरे अपने अभ्यास के लिए यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि पढ़ुओं कहने से कोई पढ़ता नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ गिनाया जा रहा है। जीव के वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श भी नहीं, रूप नहीं, शरीर नहीं, संस्थान यानी उसके कोई आकार, जो शरीर का आकार है ना उसको संस्थान कहते हैं, संस्थान नहीं और सहनन भी नहीं। सहनन का होता है कि जो हड्डियों की मजबूती है उसको कहते हैं सहनन। जीव के राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, प्रत्यय यानी आश्रव नहीं, कर्म नहीं, नौकर्म भी नहीं, जीव के वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, स्पर्धक नहीं, अध्यात्म स्थान नहीं, ये वर्ग वर्गणा है वो कर्म के एक एक परमाणु को वहाँ वर्ग कहते हैं, और उनका जो समूह वो वर्गणा, वो अन्य अन्य वर्गणाएं भी है ना, कारमाण वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, तो वर्ग वर्गणा वो कुछ उसके है नहीं। स्पर्धक नहीं, स्पर्धक का अर्थ होता है अनुभाव से युक्त जो कर्म परमाणु है उसको कहते हैं स्पर्धक। अध्यात्म स्थान नहीं, अनुभाव स्थान भी नहीं, जीव के योग स्थान नहीं, यानी अलग अलग प्रकार के जो योग होते हैं वो भी नहीं है। अध्यात्म स्थान ये सारे जो है ना कि जैसे गुणस्थान जो है वैसे अध्यात्म स्थानों में ये सारे जीव के कषाय के भाव ही लेना। इसमें अनुभाव स्थान में कैसा लिया कि विशिष्ट अनुभाव बंद करने वाले ऐसे कषायों के परिणाम, वैसे अध्यात्म स्थान में एक्चुअली किसको लेना है मुझे अभी पक्का याद नहीं है। अध्यात्म स्थान में ऐसे ले सकते हैं क्योंकि वितराग से वृद्धि होते होते ऐसे अलग अलग स्थान होंगे ना उसमें, हाँ संवर निर्जरा के परिणाम ऐसे होंगे, लिखना नहीं अभी, हाँ क्योंकि पूर्ण वितरागता हो जाएगी वो तो अपना स्वरूप है, परंतु तब तक ये जो पार्शल हो जाएगी वो सारे अध्यात्म स्थान होंगे। ये था नहीं उदय स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं, जीव के स्थितिबंध स्थान नहीं, संकलेश स्थान नहीं, विशुद्धि स्थान नहीं, जीव के संयम लब्धि स्थान नहीं, यानी जो मुनि योग्य जो संयम प्राप्त होता है। अनुभाग स्थान यानी अनुभाग बंद करने वाले जो अलग अलग कषायों के परिणाम, जीव स्थान नहीं अथवा गुणस्थान भी नहीं। तुम कहोगी यह नहीं वह नहीं तो क्या आत्मा शून्य स्वरूप है, ऐसा लगता है ना वो अंदर से कुछ फॉलो होगा, अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसी मान्यता है वाले है कोई ऐसा धर्म है जो कहते वो आत्मा शून्य ही है, कुछ नहीं तब आत्मा, कुछ नहीं रहता है तब मुक्ति हो जाती। आचार्य अमृतचंद्र समयसार कलश 37 में कहते हैं वर्णादि सब भाव इस आत्मा से भिन्न है, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को ये कुछ भी नहीं दिखते। पर तो बात की थी ना आत्मा का अनुभव होता है तब शरीर है कि नहीं है, राग है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, बस आत्मा का ही वहाँ ज्ञान होता रहता है। तो वहाँ नहीं दिखते, मात्र एक सर्वोत्कृष्ट तत्व ही दिखाई देता। कौन सा है सर्वोत्कृष्ट तत्व? मैं। फिर मैं कैसा है वो बताओ, पहले मैं पर ले लो, ये सर्वोत्कृष्ट तत्व मैं हूँ। ये जो निज ध्रुव शुद्धात्मा जिसको कहा है, भगवान आत्मा कहकर बुलाया है, तो वही दिखाई देता है। आगे दिखाई देखिए, आगे लिखा देखो, मात्र एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखता है। यानी उसके भेद ऐसा, ये दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चरित्र वाला, ऐसे भेद भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, ना प्रदेश अपेक्षा भेद, ना काल अपेक्षा, नहीं पर्याय वाला ऐसे भेद नहीं, और गुणों में जो भेद करते ज्ञान दर्शन चरित्र सुख वगैरह वो भी भेद नहीं, किसी भी अपेक्षा से कोई भेद नहीं, ऐसा जो अभेद आत्मा वो अनुभव में आ जाता है। हम भी अपने निज शुद्धात्मा की दृष्टि करें। अब गुण, ये अगला जो प्रकरण है 13वां, गुणस्थान विभाजन। हमने स्थूल रूप से 14 गुणस्थानों का स्वरूप देखा, अब सभी गुणस्थानों को का एक साथ भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से मूल्यमापन करेंगे। 14 गुणस्थानों के नाम अब तक तुम्हें कंठस्थ हुए होंगे, न भी हुए हो तो अब करो, वे इस प्रकार है। अभी हमने गिनाए थे ना सारे, तो पढ़ लेते खाली। मिथ्यात्व, साधारण सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश विरत, छठवा प्रमत्त विरत, सातवा अप्रमत्त विरत, आठवा कौन सा है तिपाली? अपूर्वकरण है ना, यहाँ लिखे हुए देखो। नौवा अनिवृत्तिकरण, दसवा सूक्ष्म सांप्राय, ग्यारहवा उपशांत मोह, बारहवा क्षीण मोह, तेरहवा संयोग केवली और चौदहवा अयोग केवली। ऐसे 14 नाम, मोह और योग की अपेक्षा से ये 14 गुणस्थान होते हैं। क्यों होते हैं? हमने परिभाषा क्या देखी थी गुणस्थान की? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान के लिए, याद आया ना? तो इसलिए यहाँ लिखा है कि मोह और योग की अपेक्षा से ये 14 गुणस्थान, इसकी हमने पहले चर्चा की थी, वे इस प्रकार है। अब कौन कौन से गुणस्थान में कौन से मोह है, कौन सा योग कहाँ कितना है, वो सारी बातें इसमें आएगी। यानी उसमें भी है ना, दर्शन मोह ही है, चारित्र मोह ही है। यानी मोह की अपेक्षा गुणस्थानों का विभाजन करते हैं, तो पहले दर्शन मोह कहाँ तक है, फिर वो चला जाने के बाद चारित्र मोह की अपेक्षा से हम उसमें डिविजन करेंगे। तो देखो, पहला दर्शन मोह कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म के सद्भाव या असद्भाव, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस, उसकी अपेक्षा से पहले चार गुणस्थानों में से पहले गुणस्थान में दर्शन मोहनीय कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। तीसरा कब होता है? जब सम्यक को प्राप्त करके फिर गिरेगा कोई, तो जब पहले सम्यक को प्राप्त होता है तो मिथ्या तो कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं। कुछ तो मिथ्या तो रूप ही रहते हैं, कुछ सम्यक मिथ्या तो होते हैं और सम्यक प्रकृति होते हैं। तो मिथ्या तो का उदय आएगा फिर से भी, या पहले से अगर किसी का होगा तो मिथ्या तो गुणस्थान है। तो सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्या तो का उदय होगा तो सम्यक मिथ्या तो नाम का तीसरा गुणस्थान होगा। सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो चौथा पांचवा छठा सातवा जो कुछ गुणस्थान है वो चालू रहेगा, है ना? तो पहले चार गुणस्थानों में से पहले गुणस्थान में दर्शन मोहनीय कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, और चौथे गुणस्थान में, यहाँ तो हमने अकेले चार तक ही गिना है इसलिए चौथे को अकेले को लिया, चौथे गुणस्थान में सम्यक प्रकृति का उदय या तीनों प्रकृति का उपशम या क्षय वर्तता है। चौथे में क्या क्या है? सम्यक प्रकृति का उदय होगा, वो कौन सा सम्यक को कहलाएगा? क्षयोक्षम, सम्य प्रकृति का उदय है। अब समझो सभी का उपशम हुआ है तो क्या कहेंगे उसको? औपशमिक। और समझो सबका क्षय कर दिया उसने तो क्षय। इसीलिए यहाँ क्या लिखा? सम्य प्रकृति का उदय होगा या तीनों प्रकृति का उपशम होगा या क्षय होगा। अब दूसरे गुणस्थान में, दूसरा गुणस्थान कब होता है याद है ना, कि औपशमिक सम्यक्त्व का कार्य काल चल रहा है, यानी तीनों उपशम रूप से अभी है ऑलरेडी, अभी नया और उपशम नहीं होगा, तो दर्शन मुनि का उदय भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो क्षमित है। तो वहाँ ना दर्शन मुनि का उदय है, नया कुछ उपशम भी नहीं हो रहा है, क्षय या क्षय उपशम कुछ नहीं चल रहा है। तो दर्शन मुनि की कोई वहाँ नई अवस्था नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ क्या कहा कि दूसरे गुण स्थान में दर्शन मुनि कर्म की उदय उपशम क्षय या क्षोपम में से कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती। जो उपशम अवस्था है वो तो पहले ही कर दी थी, वही चालू है, अभी नया उपशम नहीं हुआ। इस कारण वहाँ दर्शन मुनि की अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है, फिर भी वहाँ अनंतानुबंधी का उदय रहता है। हमने देखा था अनंतानुबंधी का उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाता है, दूसरे में आता है। वहाँ एक कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छह अवधि रहकर पहले गुण स्थान में जाएगा। पहले में जाते ही उसका मिथ्यात्व का भी उदय चालू हो जाएगा, दूसरे में उसका उदय नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, अब चारित्र मुनि की अपेक्षा, चारित्र मुनि कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से यह अपेक्षा पांचवे से बारहवें गुण स्थानों में पाई जाती है। पांचवे गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन दो कषाय कर्मों का अभाव है। अब यहाँ अभाव कहा, ये तो स्थूल बात की, अभाव यानी वो उदय का अभाव है चला। तो पांचवे गुण स्थान में अनंतानुबंधी, सॉरी ये उदय की बात नहीं है, ये कषाय की बात है, कर्मों की बात नहीं है, कर्मों के अगले वाक्य में लिया है। अच्छा अगले वाक्य में नहीं, उदय का तो अभाव है ही, परंतु वैसे कषाय भी नहीं कर रहा है ना जी, दोनों को लेना। मुनि कर्म में ऐसा ही नियम है, जो जो कर्म वहाँ उदय रूप है वहाँ वैसे जीव भी कषाय रूप करता है। अनंतानुबंधी का उदय में जीव भी अनंतानुबंधी कषाय करता है, मिथ्यात्व का वहाँ उदय चल रहा है जीव भी मिथ्यात्व करता है। ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व का उदय है और जीव सम्यक्त्व करे, या ऐसा भी नहीं है कि जीव मिथ्यात्व कर रहा है वो वहाँ उपशमित है। दोनों का एक साथ वैसे ही परिणाम होते मोहनीय में आके, अन्य में नहीं, अन्य कर्मों में अलग अलग बातें चलेगी। तो पांचवे गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन दो कषाय कर्मों का अभाव है, परंतु वहाँ प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और नौ कषाय कर्मों का सद्भाव है। नौ कषाय कर्म यानी कौन से? हास्य रति यानी हास्य कर्म और रति कर्म ऐसा लेना, उज्ज्वल कर्म की बात है। छठवें गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और संज्वलन कषाय कर्मों का तीव्र उदय है। ये चारित्र मुनि की अपेक्षा लगा रहे हैं ना। सातवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय कर्म का मंद उदय है। पहले हमने देखा था छठवें सातवें में, छठे में संज्वलन का तीव्र उदय और सातवें में मंद उदय, आठवें में मंदतर और नौवे में मंदतम, तरतम यानी सुपरलेटिव डिग्री है ना, गुड बेटर बेस्ट वैसे, वो तर यानी बेटर और बेस्ट यानी तम। आठवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय कर्म का मंदतर उदय है। नौवे गुण स्थान में संज्वलन कषाय कर्म का मंदतम उदय है और दसवें गुण स्थान में केवल संज्वलन के सूक्ष्म लोभ कषाय कर्म का उदय है। ग्यारहवें गुण स्थान में चारित्र मोहन कर्म की 21 प्रकृति यानी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और नौ कषाय नौ इन सबका उपशम है। बारहवें गुण स्थान में उपरोक्त यानी ऊपर बताई हुई 21 प्रकृति का क्षय है। यानी उनका क्षय करके जीव बारहवें गुण स्थान में जाता है। यानी वो पहले क्षपक श्रेणी चढ़ते समय उसने मोहनीय का क्षय करके, दर्शन मोहनीय का क्षय करके क्षायिक समय दृष्टि हुआ था। अब चारित्र मोहनीय का क्षय करके वो क्या होगा? क्षायिक चारित्र प्राप्त करेगा। यानी क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र पूरा हुआ उसका बारहवें में, और फिर तेरहवें में वो बाकी जो है क्षायिक ज्ञान लाभ ज्ञान दर्शन वगैरह वो सारे वीर वगैरह वो क्षायिक हो जाएंगे। अभी तीसरी अपेक्षा योग के सद्भाव की अपेक्षा से तेरहवें गुण स्थान योग की सद्भाव की मुख्यता से है और नीचे लिखा है योग के अभाव की मुख्यता से 14वां गुणस्थान में योग का अभाव है। अब आगे भी लिखा है ये योग जो है पहले से 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। आगे से दोबारा इसको लिया है 12वां नंबर है देखो 105 पेज पर योग और अयोग की अपेक्षा से पहले से 13 गुणस्थान योग सहित है यानी अकेले सहयोगी की योग है ऐसा नहीं तब तक योग है ऐसा लेना पहले से 13वें तक यानी सहयोगी है और केवल 14वें गुणस्थान के जीव अयोगी है। तो ये उसके साथ हमने पढ़ लिया तो उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। अब 5वां पॉइंट अविरत या विरत की अपेक्षा से पहले से चौथे तक सभी चारों गुणस्थान अविरत ही है जिसको हम असंयमी कहते हैं। हाँ व्रत नहीं उनके कोई 5वां कैसा है संयम असंयम या विरता विरत या एक देश संयम एक देश व्रत ऐसा। छठे गुणस्थान से ऊपर के सभी गुणस्थान वर्ती जीव विरत है उनको विरत कहेंगे। छठवे का नाम क्या है प्रमत्त सातवें का अप्रमत्त आगे विरत भी लगाया तो आगे के सारे विरत वाले ही है व्रत वाले। अब अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से पहले तीन गुणस्थान अज्ञानी जीवों के हैं मिथ्या ज्ञान है ना पहले और दूसरे तीसरे में मिश्र ज्ञान कहलाता है परंतु वो भी और भी उससे भी बदतर ऐसा है समय से भ्रष्ट हो चुका है वो जीव इसलिए पहले तीन गुणस्थान अज्ञानी के हैं और चौथे से 14वें गुणस्थान तक के सभी जीव ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी है यानी उसमें केवल ज्ञानी है अल्प ज्ञानी है सब ज्ञानी और अज्ञानी यानी मिथ्या ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी सब एक। अब अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की अपेक्षा एक से 12 गुणस्थान वर्ती जीव अल्पज्ञ है मति शुद्ध ज्ञान वाले है ना वो और 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती जीव सर्वज्ञ है ये दोनों गुणस्थान केवली के हैं। अब श्रावक की अपेक्षा चौथे और 5वें गुणस्थान वर्ती जीव श्रावक है हमने देखा था पहले ये मुख्यतः तो 5वां ही श्रावक है परंतु चौथे को भी श्रावक कहते हैं। गुरु अर्थात मुनि की अपेक्षा से प्रमत्त अप्रमत्त गुरु यानी वो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत इनका तो स्वरूप हमने देखा था कि द्रव्य लिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है और फिर उनका 6वां 7वां गुणस्थान होता है। फिर श्रेणी पर आरूढ़ गुरु यानी श्रेणी वाले तो उसमें भी उपशम श्रेणी वाले होंगे और शपक श्रेणी वाले होंगे तो यहाँ 8वें से 12वें तक ऐसे कॉमन दोनों को मिलाकर 8वें से 12वें लिखा तो 8 से 12 गुणस्थान तक के गुरु। और परम गुरु पूजा में आता ना देखे नाथ परम गुरु हो कौन से पूजा में 16 कारण की पूजा है कि 16 कारण भावना भाकर यानी ये 16 भावना भाकर जीव तीर्थंकर होता है उनको परम गुरु कहा है उनके हम जय बोलते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ये 13वें और 14वें गुणस्थान के जीव अर्थात अरहंत परमात्मा इनको परम गुरु कहते हैं। अब श्रेणी की अपेक्षा से उपशम श्रेणी वाले 8वां 9वां 10वां और 11वां ये जो है मुनि जो है ये सारे गुणस्थान वर्ती मुनि जो उपशम श्रेणी वाले 11वें के अनंतर वे नियम से क्रमशः नीचे 6वें तक आते हैं। शपक श्रेणी वाले कौन कौन से हो गए अभी बताओ 8, 9, 10 और 12 और 12वें के बाद नियम से आएंगे नीचे नियम से ऊपर ही जाएंगे 13वें में। अब प्रमत्त और अप्रमत्त भाव की अपेक्षा से पहले से 6वें गुणस्थान प्रमत्त भाव सहित है वो प्रमत्त विरत है ना तो उसमें से जो विरत शब्द है ना वो आगे कंटिन्यू करना ऊपर 6वें से यानी 6वां भी विरत वाला है 7वां भी विरत है 8वां 9वां 10वां ऊपर के सारे विरत है और उसमें जो प्रमत्त शब्द है वो नीचे को लगाना। हाँ प्रमत्त अंत्य दीपक है और विरत आदि दीपक है अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त विरति एक शब्द है, तो प्रमत्त शब्द अंत दीपक, पहले से छठे तक सारे प्रमत्त, और वो विरत शब्द आदि दीपक, तो वहां से आगे वाले सारे विरत। हाँ देखो, अंत दीपक यानी वो प्रमत्त शब्द छठवे में हमने कहा, तो उसका अर्थ होता है कि जो पहले सारे में उसको लागू करना, उसको कहते अंतिम बताए ना, तो वो अंत्य दीपक, और जो पहले बताते हैं तो हाँ तो आदि दीपक। जैसे हम कहते हैं नमो लोए सव साहुण, तो लोए सव कहाँ लगाया हमने, लास्ट में लगाया, तो पहले सारे में वो जान लेना। कोई कोई शब्द पहले बताते, वृषभादि 24 तीर्थंकर, हाँ तो ये आदि कीर्तन तो वहाँ से लगाया ना, तो ऋषभ से लेकर सारे कीर्तन करें तो आदि दीपक। हाँ उदय ने वो भी उसका फल मिल रहा है, सम्यक वो तो शोषण सम्यक है। तो ऑप्शन एक समय हमने देखा था सबसे पहले, हाँ जीव पहले से चौथे में गया, एक अंत मुहूर्त काल तक वो सारे कर्मों का उपशम है अंदर, कोई भी उदय में नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं औपशमिक समय। और जो जीव क्षय कर देता है, सत्ता में से पूरा नाश कर देता है, हाँ तो उसको कहते हैं क्षायिक समय, है ना। यहाँ तक आए ना प्रमत्त प्रमत्त, समय सार में आते हैं ना, ऐसी बात मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, उसका एक अर्थ है कोई भी गुणस्थान मेरे में नहीं, प्रमत्त में पहले से छह लेना और वो प्रमत्त में सातवें से सारे लेना, तो उसमें सारे ही जीव आ गए, तो ये गुणस्थान में मेरे, मैं उस रूप में, यानी वो पर्याय की बात है नहीं, तो उस रूप में नहीं हूँ मैं, एक ज्ञायक भाव हूँ। कोई भी शास्त्र निकालो उसमें तो यही बात है कि आत्मानुभव कैसे करना और उसकी मुख्यता होती है, अलग अलग एंगल से समझाते हैं। अब यहाँ कर्म की थियरी लेकर हमें समझा रहे हैं, तो पहले से छह गुणस्थान प्रमत्त भाव सहित है, सातवें से चौदहवें तक के सभी गुणस्थान अप्रमत्त भाव सहित है। अब योग और अयोग की अपेक्षा हमने पढ़ी थी अभी अभी, अब 13वां पॉइंट रागी और वितरागी की अपेक्षा, पहले से तीन गुणस्थानों में मात्र रागी जीव है, केवल रागी ही है, उसमें वितराग तक बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं है, मोक्ष मार्ग के विरागत है वहाँ वितराग भाव अंश मात्र भी नहीं है। अभी दूसरा पॉइंट, चौथे से दसवें गुणस्थान तक वितरागता के साथ राग भी है, परंतु वहाँ क्रम से वितरागता बढ़ती जाती है और राग और हो गया और करना और राग घटता जाता है। ये ख्याल में आया, चौथे वाले को जितनी वितरागता है उससे अधिक वितरागता पांचवे वाले को, और चौथे वाले को जितना राग बाकी है उससे कम राग पांचवे वाले को है, चौथे वाले को कितने कचाई चौकड़ी बाकी है अभी, तीन, और पांचवे वाले को दो, छठे सातवे वाले को एक, और वो भी मंद मंद होते जाते हैं ऊपर, तो कषाय घटते जाते हैं और वितरागता बढ़ती जाती है। ग्यारहवें बारहवें तेरहवें चौदहवें गुणस्थान वर्ती जीव पूर्ण वितरागी है, हमने देखा था ना वो मोनी का पूरा, एक तो क्षम किया किसी ने क्षय कर दिया, तेरहवे चौदहवे वाले में तो अभी उसका सवाल ही नहीं है कुछ करने का। ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवों को वितराग छद्मस्थ कहते हैं, अभी अल्पज्ञानी है वो, पूर्ण सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, इसलिए वे वितराग तो है परंतु छद्मस्थ है। और तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीवों को वितराग सर्वज्ञ कहते हैं। अब सुख और दुख की अपेक्षा से, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम दुख के कारण है, और हमने आज तक दुख के कारण किसको समझा है, ये पड़ोसी दुखी दे करता है बहुत, है ना, मार्क्स नहीं मिले परीक्षा में इसलिए मैं दुखी हूँ, या अन्य अन्य कोई भी चीज, पैसा नहीं मेरे पास इसलिए दुखी है, मुझे पुत्र नहीं इसलिए दुखी है, ऐसी सारी मिथ्या मान्यता है। मगर किससे दुखी है जीव? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम भी। चौथे वाले से मुनि क्यों सुखी है? वहाँ संयम है, आत्मस्थिरता। ये अकेला बाह्य संयम नहीं लेना, आत्मस्थिरता ही सच्चा संयम है। तो ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम दुख के कारण है, इसलिए निम्न विभाजन होगा। पहले से तीन गुणस्थानवर्ती जीव नियम से दुखी है, पहले से तीसरे तक लेश मात्र सुख नहीं है, क्योंकि वितरागता बिल्कुल नहीं, हमने देखा था। और वितरागता से ही सुख की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। तो जीव सच्चा सुखी कब होना शुरू होगा? हाँ, समय दर्शन होते चौथे गुणस्थान से आगे। चौथे से दसवें गुणस्थानवर्ती जीव कुछ प्रमाण में सुखी और कुछ प्रमाण में दुखी है। अभी कौन अधिक सुखी होगा, चौथे वाला कि सातवें वाला? हाँ, क्यों? वितरागता है, जितनी वितरागता है उतना सुख है, और जितना राग बाकी है उतना दुख है। और बंद भी काहे से होगा? ये राग से। पहले हमने पढ़ा था आपको, तो ये वितराग विज्ञान में आता है कि जितना राग बाकी है उससे ही बंद होता है, जितना ज्ञान है उससे बंद नहीं होता, चारित्र है उससे बंद नहीं होता, समय दर्शन है उससे बंद नहीं होता। तीनों में राग को लिया, राग से ही बंद होगा, यानी राग से दुखी भी है और राग से नया बंद भी कर रहा है। ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव पूर्ण वितरागी होने का कारण पूर्ण सुखी है। अभी अनंत सुखी नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? आकुलता नहीं, आकुलता कहेंगे तो ये मोहनीय वाले आकुलता नहीं होगी वहाँ। देखो, पूर्ण सुखी तो है, मति शुद्ध ज्ञान वाला जितना सुख को जान सकता है उतना जानेगा। अनंत सुख को जानने वाला ज्ञान भी कैसा चाहिए? अनंत चाहिए। अनंत जो केवल ज्ञान है वही अनंत सुख को भी जानेगा। तो इसलिए पहले पूर्ण सुखी का और बाद में अनंत सुखी का। तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवर्ती जो अनंत सुखी है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, सुख भी अनंत सुख रूप से परिणमित है। अभी सुखगुण भी वहाँ अनंत रूप से प्रकट हुआ और पहले भी पूर्ण सुख रूप से, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से। पहले से एक से तीन गुणस्थान बहिरात्मा के हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं मालूम है ना? बहिर आत्मा, वो है तो आत्मा, परंतु आत्मा से अन्य जो बाह्य चीजें हैं उसी को आत्मा मानता है, यानी शरीर को मैं हूँ मानता है, या शरीर और मैं मिलकर मैं हूँ मानता है, या आत्मा है ही नहीं है यही मैं हूँ ऐसा मानता है, ऐसे उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं बहिरात्मा। यानी उसके साथ और भी मिथ्यात्व के जो अन्य अन्य हमने देखे थे कि राग भाव में एकत्व माना, वो सारी उसके साथ लगा दी। चार से बारह गुणस्थान अंतरात्मा के हैं। अंतरात्मा ने अभी उसने समय दर्शन प्राप्त किया है, जो स्व का स्वरूप है उसी को स्व मानता है, वो अपने में और उनको मिलाता नहीं है किसी को। ज्ञान में तो सारी बातें आती है, ज्ञान में तो आएगा ना, ये शरीर है अभी ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? अपने में कितने राग द्वेष होते हैं वो ज्ञान में आएगा कि नहीं? परंतु वो जीव उसको अपने स्वरूप में मिलाता नहीं है, यानी वो ज्ञान में उसको बराबर है, ये मैं हूँ और ये पर है। आपके भाई को छोटे भाई है समझो, मान लो है, और स्कूल में गए उसको लेने को, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो सब ज्ञान में आते कि नहीं आते? तो उसमें अपना भाई कौन है वो भी पता चलता है ना। वैसे यहाँ सारी बातें तो ख्याल में आएंगी, आ जाएगी, परंतु उसमें से स्व कौन है पर कौन है इसका निर्णय ज्ञान में बराबर होता रहता है। तो ये चौथे से बारहवें तक अंतरात्मा है, और तेरहवा और चौदह गुणस्थान परमात्मा का है। अब अशुभोपयोगी, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी की अपेक्षा से एक से तीन गुणस्थानवर्ती जीव मुख्यतः अशुभोपयोगी है। देखो मुख्यतः लिखा, वहाँ शुभोपयोग होता नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में भी निरंतर शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ होता ही रहता है, वो तो अनादि से जीव करता आया है। शुद्धोपयोग उसको प्रकट नहीं हुआ, इसलिए सम्यक तो नहीं हुआ। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको अनादि से ही शुभ अशुभ चलता आया है, फिर भी मुख्यता से उसको अशुभोपयोगी कहा, क्योंकि उनको जो सम्यक दृष्टि को जैसा पुण्य बनता है वैसा इनको नहीं बनता, वैसा शुभ इनको नहीं आता, इसलिए इनको अशुभोपयोगी कहा। चार के छह गुणस्थानवर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी है, चौथे और पांचवे में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वे गौण रूप से शुद्धोपयोगी है। नहीं तो कहेंगे वो यहाँ अकेला शुभोपयोग लिखा, शास्त्र में ये लिखा है कथन कि वे शुभोपयोगी, ये बढ़ती हुई शुभ भाव ऐसा लिखा है, बढ़ता हुआ शुभ भाव या बढ़ता हुआ शुभोपयोग ऐसा लिखा है। इन्हें चौथे के जैसा शुभ भाव है, पांचवे वाले को उससे अधिक उच्च प्रकार के शुभ भाव है, और छठवे वाले को उससे अधिक उच्च प्रकार के शुभ भाव है, तो इसीलिए वहाँ बढ़ता हुआ लिखा। परंतु वहाँ भी ये शुद्ध परिणति तो चल रही है उनकी, कभी कभी शुद्धोपयोग भी होता है चौथे पांचवे में, परंतु उनको यहाँ गौण रखा है। छठवे में होगा तो उसका नाम क्या होगा? छठवे वाले को शुभ, हाँ होगा तो क्या होगा? सातवा जाएगा। मुनि को जब शुद्धोपयोग होता है उसको अलग नाम ही दे दिया सातवा गुणस्थान, और जब शुभोपयोग है तो छठा गुणस्थान, चौथे पांचवे वाले को ऐसा अलग नाम नहीं दिया, अलग गिनाया नहीं उसको, शुभोपयोग है होता है तो उसको सातवा कहलाते हैं, होता तो है हर अंतर मुहूर्त में होता है, छठे सातवा दोनों को इकट्ठा गिनाए, वो मुनि का गुण है, छठा सातवा छठा सातवा छठा सातवा ऐसा लिया। यहाँ अकेला उपयोग लिया है, अभी मैंने पहले बताया था कि शुद्ध परिणति तो तीनों को होगी, चौथे पांचवे छठवे वाले को भी, गौण रूप नहीं है, यानी शुद्ध परिणति तो चल ही रही, वहाँ उसकी बात नहीं हम कर रहे, हम यहाँ उपयोग की बात कर रहे। परिणति तो परिणति है, उसमें मुख्य गौण की बात ही नहीं है, अब यहाँ हम उपयोग कहाँ है, शुभ में है लगा हुआ है कि शुद्ध में लगा हुआ है उसकी बात है। शुभोपयोग चलते हुए भी शुद्ध परिणति चालू रहती है, उसकी संगम विचारा चल रही कि बंद हो गई, चल रही है ना, तो वहाँ उसकी वो शुद्ध परिणति, उसमें विद्राकता उसकी कायम है। सातवें में वो अंतरंग में स्थिर है और छठवें में उसका बाह्य उपयोग है, परंतु तीन कषाय के अभाव वाली जो विद्राकता है वो छठवें में भी है और सातवें में भी है ना? अभी तीसरा पॉइंट, सात से चौदह गुणस्थानवर्ती जीव शुद्धोपयोगी है। सत्रहवा पॉइंट, अभी धार्मिक या अधार्मिक की अपेक्षा से एक से तीन गुणस्थान अधार्मिक जीवों के है, क्योंकि धर्म यानी मोक्ष मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। धर्म कहो मोक्ष मार्ग कहो वितरकता कहो एक ही बात, चार से चौदह गुणस्थान धार्मिक जीवों के है। अब मिथ्या और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से एक से तीन गुणस्थानों में मिथ्या चारित्र है और चार से चौदह गुणस्थानों में सम्यक चारित्र है। चारित्र में वो स्टेप बाय स्टेप अधिक उसमें वितरकता बढ़ती जाएगी, परंतु शुरुआत कहाँ हुई सम्यक चारित्र की? चौथे से। इससे पता चलता है कि बाह्य व्रतों का स्वीकार करने के बाद भी जब तक आत्मानुभव नहीं होता तब तक उस जीव को सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। हम क्या समझते हैं, बाह्य चारित्र को ही चारित्र समझ लेते हैं ना, ये समाज में ऐसे चलते हैं, अरे उनके इतना चारित्र है, उनका इतना संयम है, तो ऐसे उसकी महत्ता आती है। परंतु ये शास्त्र की दृष्टि से उस पर विचार करना कि जो अभी पहले गुणस्थान में है वो बाह्य में भले कैसे भी व्रत अंगीकार करे, उसको कौन सा चारित्र है वहाँ? मिथ्या चारित्र है। इस तरह और भी अपेक्षाएं लगा सकते हैं, इन सबका अभ्यास करने पर हमें गुणस्थान और मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट समझ में आता है। ये सारी अपेक्षाएं ब्रह्मचारी पंडित श्री यशपाल जी जैन के गुणस्थान विवेचन पुस्तक में से उद्धृत की हुई है, तुम पुस्तक अवश्य पढ़ना, उसमें विस्तार सहित वर्णन है। अब संक्षेप में गमनागमन संबंधी विचार करें, गमन और आगमन यानी एक गुणस्थान में से किसी एक गुणस्थान में अन्यत्र कहाँ कहाँ जीव जा सकता है और कौन कौन से गुणस्थान में उस गुणस्थान में आ सकता है, उसको कहते हैं गमनागमन। गमनागमन संबंधी विचार करेंगे। जीव के परिणाम निरंतर एक सदृश नहीं रहते। सम्यक प्राप्ति के बाद भी जीव वापस नीचे के गुणस्थानों में आ सकता है और दोबारा पुरुषार्थ करके फिर से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। ये जैसे सांप सीढ़ी खेलते ना, ऊपर गया वो इतना, फिर नीचे वो सांप के मुंह से नीचे आ गया, वैसे यहाँ भी चलते हैं। जीव के परिणाम या कर्म के उदय को ये जीव स्वयं परिणाम करता है। ऐसे ऐसे सम्यक को प्राप्त करने के बाद भी हो सकता है मिथ्या दोनों की राय में। मुनि योग के छठा सातवा गुणस्थान है, फिर भी छठे में से डायरेक्ट पहले में भी आ सकते कोई जीव। तो ऐसे अलग अलग परिणामों की विचित्रता है और ऐसे प्रथमानुभव में भी हम बहुत से ऐसे दाखिले देखते भी, तो उस पर से ऐसे अपने परिणामों की समान करना ऐसे कहते हैं हमेशा शास्त्र में वचन आता है। उपदेश ऐसा ही देंगे, अरे अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं उसको जरा टटोल, यानी समय तो हो गया, चलो हो गया, निश्चिंत हो गया, अपना अपना काम हो गया, पासपोर्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। समय तो हुआ फिर मिथ्या को मिल जाएगा तो अर्ध उद्गत परावर्तन जो अनंत काल, कितना अनंत की उसके अनंत वे भाग में अनंत चौबीस ही हो जाती है, इतना अनंत काल है वो। ये स्वामी ने कलष्टिका में आई थी वहाँ अर्ध पुद्गल परावर्तन नाम का जो अनंत काल है, वो एक पुद्गल परावर्तन है उसका आधा, तो वो भी इतना अनंत काल है। एक चौबीस होने में कितना टाइम लगेगा, दस कोड़ा कोड़ी का एक आधा ना, अवसर पीने फिर उच्चर पीने में और चौबीस होंगे, तो इन्हें एक कल्प काल बीस कोड़ा कोड़ी में खाली दो होंगे, ऐसे अनंत चौबीस ही बीत जाएंगे। उसे जितना काल लगता है उससे अनंत गुणा काल ये अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो इतना काल तक वो मिथ्या तो में जैसे इन्हें कभी प्राप्त तो हुआ के न हुआ बराबर ऐसे घूमता रहेगा और फिर जाकर वो फिर सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष तक जाएगा। एक बार सम्यक तो प्राप्त किया ऐसा कहते ना, एक बार सम्यक तो प्राप्त किया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में जाने ही वाला है, तो चलो अभी कर लिया, चलो अभी घूमेंगे और जरा, नहीं तो मोक्ष में जाना ही है, वहाँ जाने की क्या करना है, वहाँ अभी और जरा सैर खाएंगे तो चला जाएगा ये साथ निगोद नरक कहीं कहीं चला जाएगा। यानी सम्यक भी जीव को भी इतना संभालना पड़ेगा, तो मिथ्यात्वी को तो कोई जरूरी नहीं ना, गिरेगा कौन जो ऊपर चढ़ेगा, फिसलेगा कौन, अब जो जमीन पर ही जा रहा है उसको फिसलने का क्या है, डर ही नहीं है कुछ। जीव के परिणाम निरंतर एक सदृश नहीं रहते। समय तो प्राप्ति के बाद भी जीव वापस नीचे के गुणस्थानों में आ सकता है और दोबारा पुरुषार्थ करके फिर से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। पहले गुणस्थान से चौथे में जा सकता है। अभी पहले से कहाँ कहाँ जीव जा सकता है उसकी चर्चा करें। व्रत धारण किया हुआ द्रव्यलिंगी श्रावक अधिक पुरुषार्थ करके पहले से पांचवें गुणस्थान में जा सकता है। हमने देखा था कि पहले गुणस्थान से मिथ्यात्व से डायरेक्ट चौथे में जाएगा जिसने बाह्य में अनुव्रत धारण किए हुए, ऐसा अंतरंग पुरुषार्थ द्वारा ही पुरुषार्थ उसका अंतर में ही चलेगा, परंतु बाह्य में जितने उसके मंद परिणाम है तो वो उसके अधिक पुरुषार्थ होकर सीधा दो कषाय का अभाव करके पांचवे गुणस्थान में जाएगा। कोई जीव ऐसा है कि उसने मिथ्यात्व अवस्था में ही द्रव्यलिंग मुनि का धारण किया है, बराबर यथार्थ पालन करता है और फिर वो स्वरूप स्थिरता द्वारा अधिक मंद कषाय है तो वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके सीधा सातवां गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। तो इसमें तीन बातें ली, पहले से चौथे में, फिर पहले से पांचवे में, और कोई द्रव्यलिंगी मुनि पुरुषार्थ करके पहले से सीधे सातवें में गमन कर सकता है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाला द्रव्यलिंगी मुनि सातवें में जाएगा, जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो वह द्रव्यलिंगी मुनि, ये द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। अभी द्रव्यलिंगी मुनि अलग अलग प्रकार के लिए, जिसने द्रव्यलिंग धारण किया है और तीन कषाय का अभाव किया है वो सीधे सातवें में जाएगा, और जिसने द्रव्यलिंग धारण करने के बाद दो ही कषाय का अभाव किया है वो कहाँ जाएगा, पांचवे में, और जिसने द्रव्यलिंग धारण करते हुए अकेला अनंतानुबंधी का अभाव कर दिया तो चौथे में जाएगा।
द्रव्यलिंग धारण करने
ये 28 मूल पर हमने गिनाए थे उस दिन। कौन कौन से 28 मूल रूप? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 6 सात गुण। ये जो 28 मूल गुण है तो जैसा शास्त्र में बताया है, आगम में जैसा बताया है वैसा निरतिचा, उसमें कोई दोष न लगे, ऐसा जो पालन करता है उसको कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि। और जो अनुव्रत बराबर पालन करता है उसको कहेंगे द्रव्यलिंगी श्रावक। तो यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि की बात हो रही है। तो द्रव्यलिंगी मुनि जब 3 कषाय चक्री का अभाव करके सातवें गुण स्थान में जाएगा, द्रव्यलिंगी मुनि 2 कषाय का अभाव करेंगे तो 5वें गुण स्थान में जाएंगे, द्रव्यलिंगी मुनि 1 कषाय चक्री का अभाव करेंगे तो 4थे में जाएंगे। और अभी जिसने की किसी कषाय का अभाव नहीं हुआ ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि कौन से गुण स्थान में रहेंगे? पहले में ही रहेंगे। हाँ, और जो जिनका द्रव्यलिंग सच्चा नहीं है उनका मिथ्या तो गुण स्थान चलता रहेगा। जरूरी नहीं है, मगर द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ कहाँ जाता है इसकी चर्चा है। 4थे 5वें में जाने वाला तो ऑर्डिनरीली सामान्यता यानी अधिकतर तो गृहस्थ की बात है ना, वो गृहस्थ वही पहले से 4थे में जाता है, उसके कोई व्रत नहीं है बाह्यता। अभी कोई व्रत उसने अंगीकार किया नहीं, असंयम ही कहा है उसको। और 5वें वाले उसने अनुव्रत ग्रहण की प्रतिज्ञा पूर्वक,
लेकिन अनुव्रत धारण किए
वो यानी किसी ने व्रत धारण किए तो उसकी कोई ऐसा नहीं कह रहे ये बहुत मिस्टेक कर रहा है, हम कैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कैसे खाली व्रत, ऐसा नहीं। वो जी पुरुषार्थ करे सच्चे उसमें पहचाने स्वरूप को, पैसा जानना वो जान ले और आत्मस्थिरता करे तो डायरेक्ट पहले से 5वें में पहुँच जाए। यानी जो व्रत अंगीकार करते उसकी यहाँ कहीं भी निंदा नहीं है, परंतु अकेले व्रत धारण करने से मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट होता इतना बताना है। उसको क्या कहते हैं? अंक बिना बिंदी, यानी आपके पास 10 बिंदी है, 0, 10 जीरो, और उसके पीछे पहले कोई फिगर नहीं है तो उसकी कीमत कितनी है? 0, 10 भी हो गए तो, और समझो आपके पास 3 ही 0 है और पहले 1 लगा दिया तो 1000 हो जाएगी, 3 ही 0 है और उसके पास 10 जीरो है, फिर उसकी वैल्यू कुछ नहीं। वैसे ही ये इसको कहा है सम्यक्त्व बिना व्रत को शास्त्र में अंक बिना बिंदी कहा है। अरे उसकी इतना संयम तो है ना, हम तो उसकी महिमा से, अरे इतना तो किया ना उसने, अरे पर उसके पहले 1 रहा नहीं है ना वो सम्यक दर्शन वाला, तो उसकी कीमत 0 है। एकांत वो स्वर्ग का मिलेगा क्या चीज है थावर से तन धरे ऐसा कुछ है ना, वहाँ से चेकर 1 इंद्रियों में चला जाए, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में तो इतना ऐश्वर्य सागरों तक। अब वो मिथ्यात्व अवस्था में गया तो भोगने के भाव से ही भोगेगा, उसमें कोई उसको वैराग्य विरक्ता नहीं है, तो इतना सारा भोगने का भाव इतनी लालसा लेकर कहाँ जाएगा उसे, क्योंकि अब 6 महीने पहले उसकी आयु बनती है और तब तो पता लगता है कि अरे अभी इतना सारा अमर क्यों कहा देवों को, इतनी सागरों की आयु की जैसे उनको मरण नहीं ऐसे ही लगता है और फिर मरण सामने दिख रहा है तो ऐसे संकलेश परिणाम कर लेता है कि उसे कोई तिरंज में चला जाता है, कोई 1 इंद्रिय में चला जाता है, पृथ्वी का एक हो जाता है। एक कषाय चौकड़ी वाले 4थे में जाएंगे, सादी मिथ्या दृष्टि। अब और एक पहले गुण स्थान में और कहाँ जा सकता है? तो सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? एक बार जो मिथ्या तो में से सम्यक्त्व में चला गया और फिर सम्यक्त्व में आया तो उस मिथ्यात्व को सादी है ना, स्टार्टिंग है, जो जिसको अभी तक अनादिकाल से जिसको सम्यक्त्व हुआ ही नहीं है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अनादि से मिथ्यात्व चला रहा है, अभी उसमें ब्रेक हो गया, समय तो हुआ और फिर दोबारा कुछ काल के बाद मिथ्यात्व में आए तो उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। तो सादी मिथ्या दृष्टि की क्या विशेषता यहाँ लेनी है? तो जब समय तो हो जाता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, कौन से तीन? हाँ, मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी ये जो सम्यक में से फिर अभी मिथ्यात्व में आएगा तो ये उसके तीन टुकड़े बने रहेंगे, वो फिर दोबारा एक नहीं होंगे। तो अभी शादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है कि उसकी सत्ता में तीन टुकड़े, अभी उदय मिथ्या दृष्टि है तो उदय मिथ्यात्व का चल रहा है। तो ऐसे जीव को हो सकता है कि सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो पहले से तीसरे में आ सकता है। तो यहाँ ऐसा लेना कि शादी मिथ्या दृष्टि कि जिसके सत्ता में तीन टुकड़े हैं दर्शन होने के, उसको ये देखो शादी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो एक बार समय को प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। सकता है क्यों लिखा, ये सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो वो पहले से तीसरे में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले से पहले कोई पहले समय को हुआ ही नहीं है तो डायरेक्ट मिथ्यात्व में से आना भी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में और वहाँ से ऊपर चढ़े चौथे में, ऐसा कभी नहीं होता। या तो चौथे से गिर कर आता है या चौथे से जो पहले में आता है वो फिर दोबारा पहले से चढ़कर शादी वाला जो है वो तीसरे में जा सकता है। अब सभी गुणस्थानों के गमनागमन आकृतियों द्वारा देखते हैं। अभी जो हमने पहले गुणस्थानों में स्थान के बारे में पढ़ा है वही फिगर के द्वारा यहाँ रखने का आसान करने का प्रयत्न किया। देखो गमन, अभी लेफ्ट साइड में गमन की फिगर है, पहले उसको शब्दों में समझाया है और फिर एरोस के द्वारा नीचे ही लिखा है। पहले गुणस्थान से चौथे पांचवे सातवें गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। अब देखो ये नीचे लिखा है ना पहले गुणस्थान, एक एरो है सातवें में वाला, वो है द्रव्यलिंगी मुनि, गुजराती में है ना बराबर द्रव्यलिंगी मुनि लिखा है बीच में कि नहीं? हाँ, ये इसके जो एरो इसका डीटीपी यानी वो प्रूफ रीडिंग इतना हेडेक हुआ था, पांच पांच बार उसको वापस भेजा था। ये समझे नहीं वो लोगों को क्या मालूम कैसे का ये एरोस का बस उल्टी डायरेक्शन कर दी कि पूरा घोटाला पहले से सातवें के बदले सातवें से पहले यानी वो शास्त्र से विरुद्ध बातें हो जाती। तो बहुत इसमें बार 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 आगमन यानी
गमन यानी आगमन यानी कभी
जो पहला गमन जो पहले गमन देखना उसमें कहते हैं ना आगमन और निर्गमन, वो ट्रेन में भी ऐसे कहते हैं निर्गमन, हमने यहाँ गमन और आगमन लिखा है। हाँ देखो अभी गमन पहले देखो, देखो नीचे पहला गुणस्थान लिखा है और पहले से द्रव्यलिंगी मुनि हो गए सातवें में जाएंगे, पहले से ही द्रव्यलिंगी श्रावक हो गए तो पांचवें में जाएंगे। तो हमने पहले देखा था कि पांचवें में जाने वाले कौन हो गए, द्रव्यलिंगी श्रावक भी हो गए और द्रव्यलिंगी मुनि भी हो सकते हैं। अब हमने ये क्लियर होगा ना, अभी इसमें नहीं लिखा परंतु हमें जानना है। अब चौथे में जाने वाला कौन है, पहले से कोई भी ऐसा असंयत है ना अभी तक, वो तो चौथे में जाएगा और कौन कौन जाएगा, वो द्रव्यलिंगी श्राव भी जा सकता है और द्रव्यलिंगी मुनि भी जा सकता है। तो अभी उसकी चर्चा नहीं की, जो नेसेसरी है वही यहाँ लिखा है कि द्रव्यलिंगी मुनि सातवें में जाएंगे और द्रव्यलिंगी श्राव की पांचवें में जाएंगे। तो चौथे में ऐसे ही डायरेक्ट एरो कर दिया पहले से चौथा, और पहले से तीसरे में जाने वाले कंडीशन क्या है, वो शादी मिथ्या दृष्टि होगा तो ही जाएगी। तो ये पहले से कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसकी बात है। अब ये कहाँ कहाँ से आता है, अभी एरो की डायरेक्शन देखो उल्टी है, सारे के एरो पहले की तरफ है, वो कहाँ कहाँ से आता है तो पहले के ऊपर के सारे छह तक गिना, तो छठवे से पांचवे से चौथे से तीसरे से दूसरे से सारे से ही डायरेक्ट पहले में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि छठवे को पांच चार तीन दो एक करके आना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, छठवे से डायरेक्ट पहले में, पांचवे से डायरेक्ट पहले में, चौथे से डायरेक्ट पहले में, तीसरे से डायरेक्ट पहले में और दूसरे से डायरेक्ट पहले में ऐसे आ सकता है। तीसरे से आने वाला भी डायरेक्ट आएगा, तीसरे से दूसरे में नहीं जाना पड़ता। वो दूसरे में जाने वाला वो चौथे से गिर कर जाएगा, वही जाएगा और फिर वहाँ से फिर वो पहले में आएगा। हाँ मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व का उदय, ये बिल्कुल ला के बंद करके आप बता देना। जब क्षयोपशमी है तो उसका उदय कौन सा चल रहा था, सम्यक प्रकृति का, और ये दो अंदर पड़े हुए दबे हुए, तो अभी इसके बदले में क्या हुआ, मिथ्यात्व का उदय आया, तो वो पहले में आ गए, और उन्हीं के समय प्रकृति समय मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो तीसरे में चले जाएगा।
अब
वो तो पांचवे और चौथे तक आ सकते हैं और उसी में रह सकते हैं, यानी कहीं जाएंगे तो समय प्रकृति के उदय के साथ या तो वही गुणस्थान चालू रहेगा और कहाँ जाएंगे तो जनरली तो छठा सातवा ही चलता रहेगा, गिरने की कोई जरूरी नहीं है, उसको गिर सकते हैं इसलिए उसका कथन भी आता है। अब दूसरे गुणस्थान का गमनागम, अभी दूसरे से कहाँ कहाँ जाएगा, पहले गमन दिखते हैं ना, दूसरे से ओनली वन वे ट्रैफिक है, कहाँ जाएगा वो पहले में ही जाएगा, देखो एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में गमन होता है। अब आगमन वाला चार्ट देखना है इस साइड पे, वो नीचे सब सब एरो दूसरे की तरफ है, कहाँ कहाँ से आता है देखो, छठवे से, यहाँ कहीं भी सातवें से आने वाला नहीं लिखा, पहले में भी जाने वाला सातवें से कभी नहीं, शुद्धोपयोग का गुणस्थान है, वहाँ से कोई नीचे गिरेगा नहीं, वो सातवें अकेला मरण होगा तभी गिरेगा, वो चौथे में जाएगा अन्यथा नहीं। तो छठवे पांचवे चौथे में से एक कंडीशन और डाली है, औपशमिक सम्यक जीव के अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे गुणस्थान में आगमन होता है, ये दो कंडीशन है, एक तो औपशमिक सम्यक तो उसका चल रहा है, अभी औपशमिक काल अभी बाकी है उसका, एक समय और अधिक से अधिक छह अवली इतना काल अभी समझो, यहाँ से यहाँ ये इतना उसका औपशमिक का काल, उपशम का काल चल रहा है, तो इस उपशम काल में अभी ऊपर थोड़ा बाकी है, तो वहाँ तो क्या मिथ्यात्व का भी उपशम किया था और अनंतानुबंधी का किया था, परंतु मिथ्यात्व का तो उदय नहीं हुआ, अकेले अनंतानुबंधी का उदय आया, तो अभी इतना शेष काल बाकी है ना, तो उतने काल में वो दूसरे गुणस्थान में आता है और फिर यहाँ आते ही मिथ्यात्व का भी उदय शुरू हो जाता है और वो पहले गुणस्थान में चला जाता है। तो क्या कहा, इन तीन गुणस्थानों में से औपशमिक सम्यक जीव के अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे गुणस्थान में आगमन हो जाता है, तो एरो देखना, छठवे से दूसरे में, पांचवे से दूसरे में और चौथे से दूसरे में, ये दूसरे का ख्याल पता चला। हाँ दीपाली, दूसरा गुणस्थान ख्याल में आता है, अब देखो क्षयोपशम हो जाता है। हाँ क्या, हाँ सिक्स हमने देखा था ना, औपशमिक सम्यक्त्व के साथ पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवे में या पहले से सातवें में, उपशम में ही चौथा हुआ फिर पांचवा हुआ फिर सातवा हुआ ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट चौथे में तो जाएगा या डायरेक्ट पहले से पांचवे में जाएगा या डायरेक्ट पहले से सातवें में जाएगा, ऐसे एक एक क्रम से ऊपर नहीं चढ़ता, वो उपशम काल समाप्त होने के बाद वो नियम से क्षोपशम सम्यक्ति होगा, उपशम काल के पहले समय में तीन टुकड़े किए तो उपशम काल में क्या है, तीन टुकड़े है परंतु वो उपशमित है सत्ता में, तो औपशमिक सम्यक्त्व था, अभी उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो क्षोपशम सम्यक्त्व होगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो तीसरा गुणस्थान में गिरेगा, फिर इमीडिएट समय को प्राप्त करके अंतर्मुख में गिर गए थे, या मिथ्यात्व का उदय होगा तो पहले गुणस्थान में आएगा,
सातवें में जाने वाला छठे में आएगा,
है ना,
सातवें में
नहीं, ऐसे सातवें से छठवे में आएगा, ऐसे डायरेक्ट पहले से छठवे में नहीं जाता, कभी चलते समय छठवा गुणस्थान नहीं जाता, पांचवे से चौथे से भी छठवा नहीं आता बीच में, पहले सातवा और फिर नीचे छठा। हाँ, क्योंकि शुद्धोपयोग में प्राप्त होता है, तो शुद्धोपयोग में होगा वो शुद्धोपयोग वाला ही गुणस्थान प्राप्त होगा। तो छठे सातवे में शुद्धोपयोग वाला कौन सा है? सातवा। इसलिए जो शुद्धोपयोग में जो ऊपर चला तो पहले सातवें में जाकर फिर शुभोपयोग में आता है। उनको एक साथ गिनना, उसमें शुद्धोपयोग शुभोपयोग ऐसा गिनना। इसलिए पहले शुद्धोपयोग होगा तो सातवा, फिर शुभोपयोग होगा, यानी से छठा है। अब तीसरे का कर लेते हैं, तीसरे गुणस्थान का गमनागमन। गमन अभी तीसरे से कहाँ कहाँ होगा? देखो एरोज कहाँ कहाँ है, चौथे की तरफ और पहले की तरफ। तो तीसरे से गमन, गमन की बात है ना, पहले में या चौथे में होता है, यानी तीसरे से ना दूसरे में जाएगा ना ऊपर पांचवे में वगैरह भी नहीं जा सकता। तो नियम से ऊपर की ओर जाएगा तो चौथे में, और नीचे की ओर जाएगा तो पहले। क्योंकि अभी हमने देखा ना सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो ये तीसरा चल रहा है। सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा तो चौथे में जाएगा, परंतु सम्यक प्रकृति के उदय के से पांचवे में नहीं जा सकता, तीसरे से अकेले चौथे में ही जाएगा, एडजस्टमेंट ऊपर, और नीचे दूसरे में तो नहीं जा सकता। तो यहाँ मिथ्यात्व का उदय होगा तो पहले में आएगा। आगमन तीसरे में कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो आगमन छठवे से, पांचवे से, चौथे से, या नीचे की ओर देखेंगे तो पहले से। अभी हमने जो देखा था सादी मिथ्या दृष्टि जीव कि जिसकी सत्ता में तीन है टुकड़े, उसके समय मिथ्यात्व का उदय होने पर तीसरा गुणस्थान होता है। अभी देखा था ना नियम, हमने चर्चा की। तो आगमन ये देखो, ये एरो देखना, तीसरे गुणस्थान से ऊपर की ओर चौथा और नीचे की ओर पहला है गमन में, और आगमन में दीपाली बोलो कहाँ कहाँ से आता है? चौथा, और नीचे से पहला। इस तरह से तीसरे गुणस्थान में आता है। अब बाकी जो चर्चा कल करेंगे, अभी ऊपर के गुणस्थानों का और फिर काल की बात है, वो भी हो जाएगा कल। हाँ, कल लास्ट को। वाणी के